नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।